ग्रंथ रहा श्रीमद भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 22 और लास्ट 23। दो श्लोक हैं, एक ही में तात्पर्य है, इसलिए 22 को पढ़ते हैं और 23 को रिपीट कर देंगे। आनिग्रो राजा तृप्त कामानां आग्निघ्नो राजा तृप्त कामानां अप्सरस्समेवानुदिनं धिमन्यमान अप्सरस्समेवानुदिनं धिमन्यमान तस्याह सलोकतां श्रुतिभि तस्याह सलोकतां श्रुतिभि अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते आनिघ्नो राजा तृप्त कामानां अप्सरस्समेवानुदिनं धिमन्यमान तस्या सलोकतां श्रुतुभि अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते बोलेंगे प्रभु बोलो आनिघ्नो राजा तृप्त कामान अप्सरे समेवानुदिनं मन्यमान तस्या सलोकतां श्रुतुभि अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते आनिग्र राजा तृप्त कामान
हरि हरि
माताएं बोलेंगे आनिघ्नो राजा तृप्त कामान अप्सरस्य एव अनुदिनं अपि मन्यमान तस्या सलोकतां श्रुतुभि अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते आनिघ्नो राजा तृप्त कामान सत्सुरस्यमेव अनुदिनं अपि मन्यमान शब्दार्थ आनिघ्न आनिघ्न राजा राजा अतृप्तः असंतुष्ट कामना इंद्रिय भोगों से अप्सरसं स्वर्ग सुंदरी पूर्व चित्ति के विषय में एव निश्य ही अनुदिनं दिनों दिन या प्रतिदिन अधि अत्यधिक मन्यमानः सोचते हुए तस्याः उसका स्वलोकतां उसी लोक को श्रुतु भी वेदों में अवारुंदः प्राप्त किया यत्र जहां पितरः पूर्वज या पितृगण मादयन्ते आनंद लेते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य अवैचरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, पूर्व चित्ति के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अनिघ्न उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी धर्मपत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां के पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। सब तात्पर्य, यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अनिघ्न सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे। पितृलोक के विषय में सोचने का मतलब है अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी वहां रहती थी, ससुराल की सोच रहे थे। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहां के पितरगण अत्यंत आनंद सॉरी महाराज अनिघ्न सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्हें वही लोक मिला जिससे वे उनके साथ पुनः रह सकें। भगवत गीता का कथन है 8:6 में, यम यम वापी स्मरण भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव अर्थात दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। अतः हम सहज ही यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हमें गौलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है, जहां श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है इसका, संपरेते पितरि नव भ्रातरौ मेरु दुहित्र मेरु देवी प्रतिरूपाम ग्रदंसी लताम रस्याम श्यामाम नारी भद्रा देवबीति मिति संज्ञा नवोदवहन। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नवो भाइयों ने मेरु की नौ पुत्रियों के साथ विवाह किया, जिनके नाम हैं मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा तथा देववीति थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज अनिघ्न का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जना सलाकया चच्छु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमो अस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं भूतैरमहद्वे इमां पुराभिवो निर्माय सेते यदमुंश पुरुष भुङ्क्ते गुणानसो डसोडसात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे सोलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है महाराज आनिग्न का चरित्र, तो आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार महाराज आनिग्न जो किसके पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे, प्रियव्रतो भागवत है, जिसको सुखदेव गोस्वामी है प्रियव्रत को भागवत की तुलना दी है, तो उनके पुत्र हैं, तो ये भी तो कम भागवत नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी के हुए स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के हुए प्रियव्रत महाराज और प्रियव्रत के पुत्र हुए आनिग्न और इनके ही वंश में आगे आएंगे फिर महाराज नाभि और नाभि के होंगे बोलो ऋषभ देव भगवान की। तो ये वंश ऋषभ देव भगवान का है जिनके वंश में फिर आगे भरत महाराज उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र ऋषभ के। और जिस देश का नाम बदल करके इलाहाबाद वर्ष का नाम बदल करके फिर क्या पड़ जाएगा, भारत वर्ष पड़ेगा। तो ये कोई साधारण चरित्र नहीं है, इसलिए बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। तो यहां पर जो प्रसंग चल रहा है आनिग्न राजा अतृप्त कामा नाम, अर्थात महाराज आनिग्न ने हजारों हजारों वर्ष पृथ्वी के समस्त भोगों को भोगा और उसके बाद में जो है यहां से संतुष्टि नहीं हुई तो फिर जो है स्वर्ग के भोगों को भी भोगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ, अंत में परिणाम हुआ अतृप्त राजा अनिघ्न। अतृप्त है किससे? कामनां, विषयों की कामनाओं से, भोगों से अभी तक अतृप्त बने हुए हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है संसार में एक बड़ा आश्चर्य है, वो आश्चर्य क्या है? अहनी अहनी भूतानी, ये आश्चर्य है। सब मर मर करके जा रहे हैं, कहां? यमपुरी में जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में दूसरा आश्चर्य ये है, जैसे यहां पर जो है मालूम चलता है कि हम देख रहे हैं संसार में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने जो है असंख्यों असंख्यों भोगों को भोगा, असंख्यों वर्षों तक भोगों को भोगा, लेकिन कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि जो पूरी तरह से तृप्त होकर के सोचा हो कि चलो भाई अब मैं तृप्त हो गया पूरी तरह से। ये भी तो कम आश्चर्य थोड़ी है, ये दूसरा आश्चर्य है। लोग प्रत्येक दिन भोगों को भोग रहे हैं लेकिन फिर भी जो है उनका पेट जो है पीठ से लगा ही जा रहा, बोलो हरे कृष्णा। और तीसरा जो है आश्चर्य क्या है इस संसार में जो है, तीसरा आश्चर्य यह है कि जो है एक देख रहा है कि मैं जितना सुखी हूं मुझसे ज्यादा वो फलाना सुखी है। ये भी तो आश्चर्य है ना। हर व्यक्ति संसार में सोच रहा है कि वो फलाना व्यक्ति है, वो जानता है कि मैं सुखी नहीं हूं लेकिन हो सकता है कि वो सुखी होगा। दूसरा सोच रहा है कि नहीं, हो सकता है कि वो सुखी होगा। तीसरा सोच रहा है कि हो सकता है वो सुखी होगा, लेकिन वास्तव में कोई भी सुखी नहीं है लेकिन सोचे जा रहे हैं कि वो सुखी होगा, वो सुखी होगा। इसलिए यति, क्या नाम है, यति जी जो है आत्मदेव को ये बता रहे हैं। जिस समय जो है आत्मदेव पुत्र की कामना से घर छोड़ करके निकल गया था जंगल के लिए भजन करने के लिए, लेकिन भजन तो किया नहीं, वहां जो है एक ऋषि से भेंट हो गई। उन्होंने देखा ये तो सस्ते में पड़ जाएगा, भाई कौन भजन करेगा इतना समय इस भजन में लगाएंगे, इससे बेटर इनको प्रसन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने जो है बड़ी नम्रता से दंडवत मार दिया। अब साधुओं के सामने दंडवत मारने का मतलब होता है कि वो कितने भी जो है नशे में हो या क्रोध में हो, नशे का मतलब भगवत भक्ति के नशे में हो, लेकिन यदि दंडवत मार देने से तुरंत पिघल करके जीरो पे आ जाता है उनका टेम्परेचर। तो इसलिए यति जी बड़े प्रसन्न हो गए उससे जो है, और उनसे कहा भाई क्या बात है तुम इतने कुछ तुम्हारा मुंह लटका हुआ दिखाई दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा जो है कोई लड़का नहीं है हमारे पास में, इसके बिना मैं बड़ा दुखी हूं, लड़का होना चाहिए, घर की सुख संपत्ति बिल्कुल फीकी फीकी लग रही है। तो यति महाराज ने कहा हे ब्राह्मण देव, तुम ऐसा सोच रहे हो कि लड़के से मिल जाने से तुम सुखी हो जाओगे? तो जिनके लड़के हैं, सगर के 60,000 लड़के थे, क्या वो जो है सुखी हो गए थे क्या? क्या जो है आगे चल करके क्या नाम है नाभि के होंगे बैन, सॉरी उनके जो बैन क्या नाम अंग के बैन हुए तो क्या वो खुशी हो गए क्या? अरे भाई शास्त्रों में ऐसे हजारों दृष्टांत भरे पड़े हैं, क्या लड़के वाले सभी खुशी हैं क्या? इसलिए तुम सोच रहे हो कि मेरे को लड़का मिल जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना सोचना गलत है। तो सिद्धांत बता रहे हैं कि न च इंद्रस सुखम किंचित, न च इंद्रस सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। हे ब्राह्मण देव, जैसा तुमने जो है मन में भ्रम बैठा करके रखा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा हो जाने से, लेकिन न च इंद्रस्य सुखम किंचित, अरे तेरी बात तो जाने दो, तू तो है ही किस लाइन में आता है जो सुरक का राजा इंद्र है, जिसके लिए जो है इतने भोग ऐश्वर्य भरे पड़े हुए हैं बिना लाइसेंस के, वो भी जो है सुखी नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, और तुम सोचो कि भाई वो तो इंद्र की बात है, भाई हम क्या जाने इंद्र के बारे में, लेकिन इस संसार में ये जान लो कि जो सारे पूरे पृथ्वी का जो एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास में असंख्य भोग भरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी आज तक सुखी नहीं हुआ है। न सा सुखी चक्रवर्ति, तो कौन सुखी है? तो सुखम अस्ति विरक्तस्य, विरक्तस्य विरक्त अस्य सुखी मुनेरह एकांत जीवनः, जो भगवान की भक्ति में लगा है वो ही सुखी है और बाकी सब दुखी है। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया है, क्या गाया है? दीन कहे धन, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख शिव को भारी, शिव जी को भारी है। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी है। तो इस संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो, तो इसलिए आपको शांति हो जाना चाहिए है? अब ये सोचना चाहिए फलाना भी सुखी नहीं, अमुक भी सुखी नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि टेंशन थी किससे? अपने दुख से टेंशन नहीं थी। किससे टेंशन होती है? दूसरे के सुख से टेंशन होती है, इसलिए टेंशन खत्म कर देना चाहिए। तो शास्त्रों के अंदर ऐसे हजारों दृष्टांत भरे पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस संसार को खूब भोगा, खूब भोगा, और अंत में अपना निर्णय भी दिया। हम सौवरी ऋषि का जो है एक दृष्टांत देखते हैं। सौवरी जो है यहीं पास में जमुना जी में तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या करते करते और एक मस और मछली के मिलने पर जो है वो आसक्त हुए, उनकी आसक्त काम वासना जगी, तो वहीं जो है मंदहातर जो राजा थे, जिनके वंश में आगे चल करके कौन आएंगे? नवे स्कंद के, नवे स्कंद में किसकी कथा है? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान रामचंद्र जी आए जिनके वंश में आगे चल करके, तो उनके जो है 50 कन्याओं से गए थे, एक कन्या से शादी करने के लिए 50 से कर डाले, और उन्होंने अपने तपोबल से इतने भोगों की सृष्टि कर दी, इतने भोगों की सृष्टि कर दी, और उन भोगों को खो उन्होंने भोगा जितना भोग सकते थे। लेकिन अंत में जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवं ग्रहे सु अविरतो विषयान विविदै सुखै सेव्यमानं न च सुतुष्यतः आज्यर आज्यस्तो आज्यस्तो कये एव अनलः अनिलः। बोलते हैं एवं ग्रहेषु अविरतो विषयान विविदै सुखै, विषयान अविरतो ग्रहेषु विविदै, अर्थात बोलते हैं घर गृहस्थी के जो सुख हैं, और जिसमें सबसे बड़ा सुख है स्त्री सुख है, उसको जो है कई प्रकार से उन्होंने भोगा, कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं, लेकिन हजारों वर्षों तक भोग करके भी वो क्या समझ पाए सारी चीज से? तो उस बोल रहे हैं कि सेव्यमानम न च तुष्यतः, सेव्यमान मतलब सेवन करके भी, भोगों को भोग करके भी न तुष्यतः, आज तक उनको तुष्टि नहीं मिली। और मेरा अंदाजा हो सकता है कि अभी भी सोच रहे हो वो, और हम क्या सोच रहे हैं कि हमें ये कर लेंगे तो ऐसा हमें वो हो जाएगी, लेकिन सोचो ऐसा नहीं है कि जेल जाने में ही सबक लेना चाहिए, जेल में जाकर के जो आया उसके हालचाल पूछ करके ही समझ जाना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सौवरी ऋषि जो हैं बोल रहे हैं ये सारे भोग जो हैं कैसे लगे मेरे को, पेट में खाते हैं तब तो भूख लगता है तो शांत होती है लगता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कैसे लगे इतने सारे भोगों को भोग करके। आज यस्तो कई इब अनल, तो इब अनल, अनल बोलते हैं अग्नि को, इब मतलब सदृश, जैसे अग्नि में कोई घी की एक एक बूंद डालना हो तो उससे अग्नि सोचे कि बुझेगी, तो कभी ऐसा समय आएगा अग्नि बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। बस इतना ओ जो है इतने सारे भोगों को भोग करके भी और ये रिजल्ट निकाल करके दिए कि भैया ये जो है अग्नि बुझने वाली नहीं। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुख का भंडार है, तो इसलिए इसमें सुख ढूंढने का प्रयास मत करो। यदि सुख ढूंढोगे तो वास्तव में सुख तो मिलेगा नहीं, और जो थोड़ा बहुत समय मिला था वो भी हाथ से गमा बैठेंगे। आप लोगों को एक मैंने कथा बताई थी, इसको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात उस समय की है कि एक राजा थे और उनकी जो है बहुत सुंदर धर्म पत्नी थी, रानी थी उनकी। एक बार अपनी सखियों के साथ में वो कहाँ गई, उनके राजभवन के अंदर ही एक वो था, क्या नाम है उसको बोलते हैं, क्या स्नान कुंड को क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल था। तो उसमें वो क्या कर रही थी अपनी सखियों के साथ में, और उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे किनारे पर, कुछ जेवरात भी थी उसमें, एक बहुत सुंदर हार भी था गले का, जो पहले उसको नौलखा हार बोलते थे, अभी न जाने क्या बोलते हैं, लेकिन पहले नौलखा हार बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाल करके वहां रख दिया और कोई स्नान करने में लग गई, व्यस्त हो गई। लेकिन होनी हो तो बलवान हुआ क्या, एक चील आई और वो चमचमा रहा था, तो उसने न जाने क्या सोचा, जो भी सोचा हो उसको उठा करके लेके भाग गई। और जो है इधर जब रानी को मालूम चला तो रानी बेचारी बड़ी दुखी हो गई कि हाय हाय मेरा नौलखा चला गया। अब तो रोती पीटती है राजा के पास में ही, राजा ने सारा समाचार सुना तो उन्होंने भाई डांडर बताया बनाया, कोई बात नहीं है, एक हार चला गया हम दूसरा बनवा देते हैं, अब इतना टेंशन क्यों ले रही हो। तब रानी ने कहा कि नहीं जी हम तो उसी हार को लेंगे। राजा ने कहा भाई अब उस हार को कहाँ ढूंढवाएं, अब तुम जो है हम दूसरा बनवा देते उसी से संतुष्टि कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए तो हमें वही चाहिए, नहीं तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब समस्या बड़ी, तो राजा ने जो है राज्य में डिडोरा पिटवा दिया, जिसको भी भाई वो हार मिले, हार तो 9 लाख का है, हम आपको आधा राज्य दे देंगे, खूब राज्य करो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन छोड़ दो, इसलिए उसका हार का लालच मत करो, राज्य हम देंगे आधा। तब तो जो है सब ने अपने काम धंधे छोड़ दिए और सब किस में जुट गए, हार ढूंढने में जुट गए जो है। अब तो जो है सब वही सपने देख रहा है, चाहे वो सो रहा है चाहे वो जग रहा है, खा रहा है पी रहा है, चलते फिरते एक ही सपना है राजा बनने का, सबको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही मिलने वाला है वो। तो एक क्या हुआ, एक जो है वो लकड़ी काटने के लिए सुबह ही निकल गया था, तो इसलिए जो डिडोरा पिटा उसको मालूम नहीं चला। लेकिन बाद में जब लकड़ी बांध करके आ रहा था तो बहुत उसको जो है उनका एक मित्र जो है बाद में रास्ते मिला, उन्होंने कहा सुना है, अरे कब तक लकड़ी ढोते रहोगे। बोला क्या हुआ, अरे नहीं सुना क्या। बोला मैंने नहीं सुना। अरे ऐसी बात है भाई, हार मिलेगा तो पूरा आधा राज मिलेगा, सोच लो, इसलिए छुप बंद कर दो, हार को ढूंढने में जुट जाओ। तो बेचारा वो भी टेंशन में आ गया, बोला बात तो बिल्कुल सही कही, अब मैं कब तक लकड़ी काटता रहूंगा भाई, अब जंगल तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लकड़ी भी दूर से लानी पड़ती है, टैक्स भी बहुत देना पड़ता है। इसलिए वो सोचता थका हुआ था, गर्मी का समय था, तो एक जो है शहर के ही नजदीक क्या था, एक पोखर थी जिसमें सारा शहर का गंदा पानी आता था, वहीं जो है कुछ छाती पीपल की और उसमें वो बैठ गया, थोड़ा उस लेने के लिए थोड़ा मतलब थका हुआ था, तो इसलिए सोच रहा था है वो हार जो है मुझे मिल जाए तो भाई क्या मेरा काम बन जाए, लकड़ी काटना ही हमेशा के लिए बंद हो जाए, फिर तो मैं जो है लकड़ा हारे से राजा बन जाऊंगा। तो ऐसे सोच ही रहा था तो उसकी दृष्टि तालाब में पड़ी, पोखर में पड़ी, तो उन्होंने देखा कि हार दिखाई दिया चमचमाता हुआ। उन्होंने बड़े चश्मा फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखा कि हार ये कुछ और है, तो उसको लगा कि वास्तव में वो हार है। अब तो उसने अक किया ना धको, कूद पड़ा उसमें पोखर में और उसको ढूंढने लगा। लेकिन पानी तो क्यों, वो सब कोई अच्छा पानी तो था नहीं, फिल्टर है वो तो उसका पानी था, पूरा मच गया, वो पूरा गंदा हो गया। दूसरे ने कहा भाई क्या ढूंढ रहे हो? अरे बोला हार है इसमें। बोला अच्छा है? बोला हाँ। वो भी कूद पड़ा। ये समाचार तीसरों को मिला, वो भाई हार मिल गया, हार पोखर में पड़ा है। तीसरा दौड़ के आया, अब तो ये बिजली की मतलब आग की तरह फैल गया पूरे शहर में। हार पोखर में, हार उसमें पड़ा हुआ है तालाब में, सब जो आया उसी में डंप करें। अब पूरा पोखर का पूरे शहर के लोगों ने मचा करके मत करके रख दिया। सोचो वो भी पानी कितना पवित्र है, गटर का बिल्कुल फिल्टर हुआ। तो जो है सब एक प्रकार से ऐसे लग रहा था, इतने पर्व में भी जो है इलाहाबाद में भी लोग इकट्ठे नहीं होते हैं जितना आज इस पोखर पे जो सब स्नान कर रहे थे। तो एक महात्मा जी उधर से दिख चले जा रहे थे बड़े अपने भगवान के भजन में, उन्होंने देखा भाई लगता है कोई विशेष पर्व लगा है इसलिए सारा शहर यहाँ जो है स्नान कर रहा है। उन्होंने भी झटपट अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतार करके तो पूछने लगे भैया आज ऐसा कौन सा पर्व है जिससे आप सब स्नान कर रहे हैं। उन्होंने अपना सा मुंह मनाया, महाराज कोई पर्व नहीं है। बोला पर्व नहीं है तो पूरा शहर जो इसमें स्नान कर रहा है। अरे भाई इतना कितना पवित्र है तालाब। बोला तालाब पवित्र नहीं है महाराज, सारे शहर की गटरें सब इसी में आती हैं, जो भी थर्ड क्लास की गटरें हैं। बोला अच्छा फिर कैसे क्या है? तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि इसमें हार है, दिखाई देता है लेकिन मिलता किसी को नहीं। दिखाई देता है ना सबको हार, मिलेगा इसमें सुख मिलेगा, अवश्य ही इससे तो सुख मिल जाएगा, इससे भी जरूर मिल जाएगा। मैं वो तो सोचता है कि इसमें तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या बात है भाई, हार दिखाई देता है मिलता नहीं है, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आप सब थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा उसको फिल्टर होने दो, बाद में हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ। तो सब बाहर हो गए। अब थोड़ा घंटा आध घंटा लगा उसको जो है थोड़ा सा बैठने में उसकी गंदगी को। कुछ समय बाद में बैठी तो उसको हार दिखाई दिया, दिखाई दिया हार, ऐसी बात नहीं, उसको भी दिखाई दिया। लेकिन जैसे उसने देखा हाँ भाई हार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने फिर बुद्धि से काम लिया। उन्होंने देखा कि भाई ये हार तो दिखाई दे रहा है लेकिन हार की ये क्या दिखाई दे रही है, परछाई दिखाई दे रही है, ये वास्तव में हार दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब परछाई इधर है तो इसका मतलब उसका जो है जो वास्तविक है वो कहीं होना तो चाहिए ना, तो इसलिए उसने अब नीचे मुंह न करके वो ऊपर मुंह किया, क्योंकि परछाई तो जो है ऊपर से ही नीचे आती है। तो उन्होंने ऊपर जब मुंह किया तो कहाँ लटका हुआ था हार, पेड़ पे हार लटका हुआ था। तब उन्होंने कहा रे मूर्खो तुम जो है इसने गंदे तालाब को तुमने मत करके रख दिया, इतना जो है नगर पालिका भी उसको फिल्टर नहीं करती थी, सब अपने शरीर पे पोत पोत करके, तुम्हें मालूम होना चाहिए हार कहाँ है, हाँ ये ऊपर है, ठीक है जिसको उतारना है उतार लेने का। तो इसलिए संसार में हर व्यक्ति क्या है इस गंदे को मथा जा रहा है, जो भी देखता है कूद पड़ता है बिना जो है कभी तो किसी तो फुर्सत ही नहीं होती कपड़े उतारने की, कपड़े सहित ही जंप मार दिए जाते हैं। लेकिन आज तक इस संसार में कोई जो है सुखी तो हुआ नहीं, और हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं बेटे पढ़ो लिखो, हम भी नहीं कहते कि मूर्ख बनो, पढ़ो लिखो पर भक्त बनो। सुखम बोलते हैं, सुख कहाँ है, सो सुखम एकांतिक मुनेर जीवन है, अर्थात एकांतिक जहां भगवान की भक्ति के अलावा और इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तुलसीदास विचार कहें हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी है। तो इसलिए इस संसार में चाहे आप कितना भी क्यों ना प्रयास कर लो सुख तो मिलेगा नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सुख की लालसा को छोड़ करके किस में लग जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। तो जीवन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के पश्चात उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। अब सारे जीवन हमने जो है विषयों को ढूंढा, तो विषयों को ढूंढते ढूंढते अब जो है हमें क्या भगवत धाम मिल जाएगा, क्या भगवत शरीर प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्धांत को लागू किया है, यम यम बापी स्मरण भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमे वेति कौन्तेह सदा तब भाव भावितः। अर्थात सदा तद भाव भावित, हमेशा जिस भाव से भावित रहोगे। ये श्लोक भगवान की बहुत स्पेशल मर्सी का है, ध्यान से सुन लेना चाहिए। भगवान इस श्लोक में बहुत अपनी दयालुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या दयालुता प्रदर्शित कर रहे हैं? भगवान ये सिद्धांत दे रहे हैं हम सभी के लिए, जिस वैल्यू से, जो कीमत दे करके एक कुत्ते को खरीदा जा सकता है, उसी कीमत से मैं भी खरीदा जा सकता हूँ, भगवान को भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। सोच लो, जिस कीमत दे करके कुत्ते का शरीर प्राप्त किया जा सकता है, उसी कीमत में हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की मर्सी हुई कि नहीं हुई, सोचो हाँ है कि ना, बोलो बोलो तो कुछ तो बोलो है, हाँ कैसे? तो यदि यम यम बापी स्मरण भावयम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, यदि हम जैसे भाव में रहेंगे, बहुत सारे लोगों को कुत्ता पालने का बड़ा शौक है, तो जब हमारा कुत्ता पालने का जब शौक है, ये ज्यादा ही कुछ बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे स्मरण किसका होता है? कुत्ते का होता है। इसलिए अंत समय में, क्योंकि अंत समय में वो ही स्मरण होगा जो आपने अपने जीवन काल में किया है। और ये स्मरण क्या होता है, एक बार फ्लैश में आ गया ना, जैसे कैमरे के सामने आपका चेहरे का जैसा भी पोज है, आप क्या कर रहे हैं, जब तक फ्लैश नहीं है आप कुछ भी कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही फ्लैश आएगा तो फिर जो है सेम वो ही आ जाएगा। आप सोच रहे हैं, आप कहेंगे जी मैं तो उस समय मक्खी मार रहा था, अरे तो पहले ही मार लेना होता मक्खी मार रहा था, अब तो वो वैसे का आ जाएगा आपका जो है। तो इसलिए एक बार फ्लैश हो गया तो गए काम से, फिर वो सेम पोज आ जाएगा। ऐसे ही मृत्यु के समय चेतना वो ही रहेगी जो हमारी हमेशा रही है, वो उस समय फिर बदलेगी नहीं। और जैसी चेतना गई फिर ये सिद्धांत जो है फिर उसको बदल नहीं सकते। मृत्यु के बाद में जब तक ये शरीर नहीं मिल जाएगा, आप कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, चाहे मनुष्य बनो मति, चाहे भूत शरीर में भटकते रहो, लेकिन जैसे ही दूसरा शरीर मिलेगा वो किस कौन सा शरीर मिलेगा? जिस शरीर में हमने जो चिंतन किया था वो ही शरीर मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है। हिरण जैसे भरत महाराज ने किसका चिंतन किया? हालांकि भगवत भक्त थे लेकिन फिर भी उन्होंने मृत्यु के समय किसका चिंतन किया? हिरण का चिंतन किया। तो हिरण से वो कौन बन गए फिर बाद में? राजा से फिर जो हिरण बन गए थे। ये सिद्धांत है। इसलिए जो है भगवान जो है इसके जो ये जो श्लोक है इसके जब दूसरे उसमें इस श्लोक में बोलते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु, सर्वेशु कालेशु तस्मात मतलब अतएव, यम यम ये सिद्धांत को लागू करते हुए इसको पुष्टि दे रहे हैं। ये सिद्धांत है कि आप जो भी क्रियाएं अपने जीवन काल में करते रहेंगे ये दूसरे शरीर का निर्माण करेगा, ये पक्का है। अब आप भगवान का स्मरण करेंगे या किसका स्मरण करेंगे, वो जैसा भी करेंगे वो आपको मिल जाएगा, आपकी संपत्ति जो आपने इकट्ठी की वो सब आपको मिल जाएगी दूसरी लाइफ में। तो इसलिए जो है जब हमें ये हमें मालूम है कि हमारी जो है हमें अच्छी संपत्ति जोड़ेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरी संपत्ति जोड़ेंगे तो बुरी मिलेगा। तो बुद्धिमता किसमें? अच्छी संपत्ति को जोड़ना चाहिए, बुरी संपत्ति को जोड़ना चाहिए? अच्छी संपत्ति को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए क्या करना है? तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मार। इसलिए सिद्धांत यह लागू होता है सर्वेशु कालेशु माम स्मरण। अतः प्रत्येक काल में तस्मात सर्वेशु, केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है जैसे ही हम मंदिर आते हैं मंदिर में थोड़ा हाथ में माला लेके इधर उधर घुमाते रहो, देखते रहो कौन आया कौन गया, ये तो आज पहली बार दिखाई दे रहा है, वो तो पहले से है, ऐसे कैसे कर रहा है, वो क्यों गया, सारी जो है हिस्ट्री आप जो है देखते रहो बनाते रहो। और घर जा करके तो वो भी खत्म, वो माला भी खुटी से टंग जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वेशु कालेशु, सर्वेशु कालेशु को मतलब होता है सोने से लेकर सोते हैं, जगने से लेकर के सोने तक और जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक, इसको बोलते हैं सर्वेशु कालेशु। इसमें कहीं संडे मंडे की छुट्टी है इसमें? कहीं भी संडे मंडे छुट्टी नहीं, लेकिन हम तो मना देते हैं फिर भी, चलो कोई बात नहीं मना लो कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च, मई अर्पित मनोरबुद्धि तो माम एव एससी, माम एव एससी, एव मतलब निश्चय ही, एससी मतलब पहुंच जाएगा मेरे पास में, माम एव एससी न असंशय न संशय, इसमें नो डाउट संशय नहीं है, वो निश्चित रूप से वो मेरे को प्राप्त करेगा। इसलिए बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से, नारद जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर तस्मात केन उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत, जैसे भी हो एन केन प्रकारेण तस्मात केन उपायेन, जो भी उपाय बने राजी से या गैर राजी से, अर्थात राजी से मतलब भजन से और गैर राजी से मतलब क्रोध से, क्रोध से हो भजन से हो प्रेम से हो ईर्षा से हो द्वेष से हो, जिस भी कामना से हो जैसे भी हो मन को कहां लगा दो, कृष्ण भी से कृष्ण में मन को लगा देना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य ही मिल जाएगी, जैसे उसका उदाहरण दे रहे हैं, बोलते हैं क्या दे रहे हैं, गोप्यः कामात भयात कंसो द्वेषात चेद्या देयो नृपाः संबंधाय वृष्णाय स्नेहात संबंधाय वृष्णाय स्नेहात यूयं भक्त्या भयं विभो। गोप्यः कामात भयात कंस द्वेषात चेद्या देयो नृपा, चेदि नरेश शिशुपाल, अर्थात गोपियों का जो है मन कैसे लगा था, कामात भगवान से वो प्रेम करती थी, भगवान से वो भगवान को क्या है अपने उपपति उपपति मानती थी, तो इसलिए उन्होंने जो है प्रेम से अपना मन भगवान में लगा करके रखा था। गोपियां उद्धव से कहती हैं, एक प्रसंग में आया है जब उद्धव जी उनको समझाने के लिए आए तो उस समय जो है गोपियां बोलती हैं, गोपियां ने समझाया करे भाई भगवान तो सर्वत्र हैं, तुम जो है कहाँ केवल उसमें एक व्यक्ति विशेष में तुम मन लगा करके रखी हो, कहाँ भगवान नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है, घट घट में भगवान है। तब गोपियों ने कहा उद्धव जी हमारा मन तो जो है एक था, वो चुरा करके ले गया, तुम बोलते हो घट घट में है, अब हमें कैसे मालूम चलेगा घट घट में है, तो चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, वह कृष्ण गया फिर भाग कहां। हे उद्धव जी चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, वह कृष्ण गया फिर भाग कहां, वह कृष्ण गया फिर भाग कहां। अब अब ब्रज मंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समान कहां। वास्तव में इस ब्रजमंडल में जो सुख था वो सब किसके कारण था? भगवान के कारण था। अब ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समान कहां। इस ब्रजमंडल में अब कोई सुख नहीं बचा। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लागी लगी तो अब लाज कहां। हे उद्धव, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब मन में कृष्ण की लगन लगी है तो अब जो है और कोई उस मन में कोई दूसरा बैठता भी नहीं। बैठने का तो हम बहुत प्रयास करती हैं कि भूल जाएं उसको, लेकिन अब उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए सब जो है, सब परिवार वाले हमें सब ने क्या घोषित कर दिया है, ये सब क्या हो गई हैं, ये सब पागल हो गई हैं। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लागी लगी तो अब लाज कहां। दुखिया पर हाय दया करके बतला दे कोई, मेरा ब्रजराज कहां। जैसे गोस्वामी लोग पुकारते थे इसमें, हे राधे ब्रज देव के चललते, हे नंद सुनौ कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ने कुतः, घोषंता वित सर्वतौ ब्रजपुरे, खेदेर महाबलौ, बंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। इस प्रकार स्मरण होना चाहिए, चिल्लाते रहना चाहिए। वास्तव में जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है, हंस खेल करके किसी ने भगवान को नहीं प्राप्त किया, सबने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कीमत चुकाई है उसके लिए। इसलिए जितना रोएंगे चिल्लाएंगे ऐसे ही शोरगुल नहीं करना, नहीं तो पुलिस वाले लेके जाएंगे। भगवान के लिए रोना चिल्लाना चाहिए। जितना रोएंगे जितना पुकारेंगे भगवान को, हे राधे ब्रजदेव के चललते, हे नंद सुनो कुतः, हे कुतो हो प्रभु, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ने कुतः। गोवर्धन की तलेटी में देखें क्या, कालिंद के पुलिन वनों में हम खोजे कहाँ खोजे। घोषंता वित सर्वत ब्रजपुरे, खेदेर महाबिहलो, खेदेर महा एक खेद के साथ में बहुत दुख प्रकट करते हुए, महाबिहल होकर के तड़पते हुए और इस प्रकार रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान का। तो इस प्रकार गोप्यात कामात, गोपियों ने काम से, और कंस ने जो है द्वेषात कंसात, कंस ने जो है द्वेष से भगवान का स्मरण किया, नहीं कंसात भयात, भय से कंस ने किया। द्वेषा चेदा देव नृपा, द्वेष रखता था शिशुपाल, हर समय गाली देता था कृष्ण को, लेकिन भगवान फिर भी उसको मिल गए। और संबंध आए ब्रश्नी बस में स्वयं भगवान उत्पन्न हुए, इसलिए उनसे तो सब मित्र का, किसी के पिता का संबंध था। और इसने आत युधिष्ठिर महाराज से बोले, नारद जी आपसे भगवान प्रेम करते हैं, आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए आप सभी का कल्याण होना ही, इसमें नो डाउट। और भक्त्या वयम विभो, और हम लोग भक्ति से जो है भगवान के साथ प्रेम करते हैं। तो इसलिए एन केन उपाय न मन कृष्ण निवेशयेत, तो जैसे भी हो जो है हमें भगवान में मन लगाना चाहिए, न कि जो है अनिग्न की तरह जो है उन्होंने अपनी पत्नी में या जो है पितृलोक की कामना करके जो है पितृलोक में उन्होंने अपना मन को लगाया। क्योंकि संसार में जहां भी जाएंगे, चाहे पितृलोक जाओ, यान्ति देवव्रता देवान, पित्र यान्ति पितृवता, भूतान यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनो अपि माम, माम भगवान बोलते हैं माम। कहाँ जाना चाहोगे, देवलोक को, पितरलोक को, भूतलोक को या भगवत लोक को? कहाँ जाएंगे, थोड़ा जोर से बोलो, प्रसाद तो मिलने वाला ही है, हमें भी मालूम चला कहाँ जाएंगे। भगवत धाम को जाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे, यही लक्ष्य हमारा रहना चाहिए। इसके बाद में जो है वो अपना शरीर त्याग करके पितर लोक को चले गए हैं, जहाँ पितर वास करते हैं, ठीक है ना, पितरों के लिए एक अच्छा पुत्र होना चाहिए जो उनको खिलाता पिलाता रहे, यहाँ से खिलाएंगे तब वो खा पाएंगे, नहीं तो वो खा नहीं पाते हैं। इसलिए एक अच्छा एक भगवत भक्त जो है पुत्र उत्पन्न होता है तो उनको भोग लगाता रहता है जिससे उनका वो सुखी रहते हैं। यदि ऐसा भक्त नहीं हुआ तो पितरलोक में भी हालत खराब हो जाती है और बाद में नीचे तो सबको आना ही होता है। तो इस प्रकार जो है उनके 9 पुत्र थे, 9 पुत्रों ने जो है किसकी कन्या से उन्होंने वो किया, क्या नाम है, मेरु की 9 पुत्रियों से, मेरु देवी की 9 पुत्रियों से उन्होंने जो है शादी की है, 9 लोग उन्होंने। तो इसलिए सभी को जो है बाद में 9 कन्या मिली, 9 मिले आगे देश करके नवद्वीपों के 9 नवमंडल जिसको बोलते हैं, सबके एक एक क्या बन जाएंगे, सब राजा बन जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि राजा बने न बने भक्त जरूर बन जाओ, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमनंदे।